स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नमस्कार। इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्याय में हमने अध्याय 11 को समाप्त किया, तो आज का अध्ययन हम अध्याय 12 से आरंभ करेंगे। और सर्वप्रथम हम परमेश्वर की बुलाहट और अब्राहम को दिए गए वायदों के विषय में देखेंगे। अध्ययन से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस कार्यक्रम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, 12 अध्याय के पहले 3 पदों में परमेश्वर अब्राहम से 3 प्रतिज्ञा करता है और वास्तव में यही बाइबल का केंद्र बिंदु है। बाकी के बाइबल पद 3 प्रतिज्ञाओं को प्रकट करते या खोलते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। मित्रों, 3 वायदों में से सबसे पहला वायदा भूमि का है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक भूमि या देश दिखाने और देने जा रहा हूं। और इसके दूसरे भाग का वायदा जाति से है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। उसने उससे यह भी वायदा किया कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दें मैं उसे शाप दूंगा। और तीसरा वायदा यह है कि पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। यही परमेश्वर की 3 प्रतिज्ञाएं अब्राहम के लिए थी। मित्रों, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करके अच्छा किया? परमेश्वर ने निश्चय ही अब्राहम से एक महान जाति बनाई और संभवतः यह जाति पृथ्वी की सभी जातियों में सबसे लंबे समय तक बनी रही और उनके साथ कोई भी जाति पूर्ण रूप से मेल नहीं खा सकती है। मित्रों, दूसरे वायदे के विषय में क्या है? क्या अब्राहम सारी मानव जाति के लिए आशीष ठहरे? जी हाँ, वह यीशु मसीह के द्वारा से सारे विश्व के लोगों के लिए आशीष के कारण ठहरे हैं और परमेश्वर का पूर्ण वचन भी हम तक अब्राहम के द्वारा ही आया है। मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर ने अपने सभी वायदे पूरे कर दिए सिर्फ पहले वाले को छोड़कर? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें एक देश या भूमि देने जा रहा हूं, और आज देखिए कि हमारे दिनों में भी वहां उस भूमि पर क्या हो रहा है। वे बड़ी कोशिश के साथ उस भूमि को थामे रहना चाहते हैं, परंतु वे इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया। पर आइए हम उस रीति से इसे ना देखें और परमेश्वर को स्पष्ट करने का मौका दें। मित्रों, प्रतिज्ञा का 2/3 भाग उनके लिए फायदेमंद रहा, परंतु परमेश्वर ने कहा वह उन्हें उस देश में प्रवेश नहीं करने देंगे यदि वे अनाज्ञाकारी और उससे दूर हो जाएंगे तब। और आज वे सचमुच परमेश्वर से दूर हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे आज भी समस्याओं में पड़े हैं। इसलिए आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर ने वायदे को पूरा नहीं किया या उनके साथ भलाई नहीं की। बात तो यह है कि परमेश्वर वही कर रहे हैं जिसे उसने कहा है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर इसराइलियों को पुनः उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में स्थापित करेंगे, और जब वह ऐसा करते हैं तब उन्हें उस भूमि को जबरदस्ती थामे नहीं रहना पड़ेगा, पर उनके पास पूरी फरात नदी का पूर्वी भाग और पूरा उत्तरी भाग, हित्ती राष्ट्र के लोग और दक्षिण में मिस्र की नदी तक, जो अरब की मरुभूमि में एक छोटी नदी है, वहां तक इनके भूमि होंगे। मित्रों, वास्तव में उन्होंने कभी भी पूरी तरह से भूमि को हासिल नहीं किया जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था। वे अपनी पराकाष्ठा के चरम बिंदु से केवल 30,000 मील भूमि को अपने अधिकार में कर सके, परंतु सिर्फ इतना ही परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया था। वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें 3,00,000 मील तक की भूमि दी थी। उन्हें बहुत लंबी दूरी पूरी करनी है, परंतु वे उसे परमेश्वर की शर्त के अनुसार उनके समय में ही प्राप्त करेंगे। इसलिए कोई भी देश इसराइल के लिए कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। कोई भी दुनिया महान राष्ट्र उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। मित्रों, आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं उसके विषय में मुझे तसल्ली है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि परमेश्वर ही है जो सारी बातों को चला रहे हैं। इसलिए यही अच्छा है कि घर में आराम से बैठें और समाचार पत्रों के शीर्षक से या दुनिया के उन खबरों से न घबराएं, क्योंकि सब परमेश्वर के नियंत्रण में है और वह अपनी रीति से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मित्रों, आइए अब हम देखें कि परमेश्वर ने अब्राहम को 3 वायदे तो दिए, परंतु अब्राहम का प्रत्युत्तर क्या था? अब्राहम का प्रत्युत्तर उत्पत्ति 12:1 में हमने पढ़ा था। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हम पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों के माध्यम से यह जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश के कसदियों में से बुलाया। प्रेरितों के काम 7:2-4 में इस प्रकार लिखा है, हमारा पिता इब्राहिम हरान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा। वहां से उसके पिता की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर उसे इस देश में लाया जहां तुम अब रहते हो। मित्रों, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन, घर छोड़ने, अपना कारोबार छोड़ने और ऊर नगर की विकसित सभ्यता को छोड़ने के द्वारा किया, यह बिना जाने ही कि उसे किधर जाना है। उसने ऐसा किया, लेकिन यह उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उसने अपने साथ कुछ परिवार के सदस्यों को भी ले लिया। उसने अपने साथ अपने पिता 13 को लिया, जबकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उसे मना किया था। मित्रों, आखिर परमेश्वर क्यों चाहता था कि अब्राहम अपने नगर और परिवार के सदस्यों से दूर हो? हमें इसका उत्तर यहोशू की पुस्तक में मिलता है। यहोशू 24 अध्याय और उसके 2 पद में, प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह आदि फरात नदी के उस पार रहते थे तथा दूसरे देवताओं की उपासना किया करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना किया करते थे और अब्राहम भी एक अन्य देवी देवताओं का उपासना या पूजा करने वालों में से था। संसार उस समय काफी आगे बढ़ना जरूरी था। इसके अलावा उसके पास एक और रास्ता था कि वह सबको नाश कर दे या मिटा दे और पुनः नई रीति से आरंभ करे। मित्रों, मुझे खुशी है कि उसने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ एक पापी के रूप में आया था और सभी पापी नाश या मिटा दिए गए होते तो आज हम नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वह दया और अनुग्रह का परमेश्वर है और वह पापियों को बचाता है। मित्रों, अब हम पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार चलेंगे और अब्राहम को अब्राहम कहकर पुकारेंगे जब तक कि अध्याय 17 ना आ जाए और परमेश्वर उसके नाम को अब्राहम से इब्राहिम न कर दे। तो आइए पढ़ें उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। अब्राहम तो 75 वर्ष का था जब उसने हारान से कूच किया। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और अब वह परमेश्वर की अगुवाई का अनुसरण करेगा ताकि वो कनान में पहुंचे। लेकिन हम पाते हैं कि लूत भी उसके साथ गया। मित्रों, अभी भी अब्राहम की आज्ञाकारिता अधूरी है, क्योंकि वह अपने भतीजे लूत को साथ में ले लिया। आगे हम उत्पत्ति 12 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, अब्राहम अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत, अपनी सारी धन संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और उन लोगों को जो उसने हारान में प्राप्त किए थे साथ लेकर कनान देश के लिए चल पड़ा। इस प्रकार वे कनान देश में आ गए। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारै को अपने साथ इस यात्रा में लिया, जो सही भी था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि अपने भतीजे लूत, अपनी सारी धन संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और उन लोगों को भी जो उसने हारान में प्राप्त किए थे ले लिया। जो समय अब्राहम ने हारान में बिताया वो ध्यान में लेने योग्य है, क्योंकि उसके कारण परमेश्वर की आशीषों को पाने में देर हुई थी। जब तक अब्राहम हारान से पलिस्तीन देश में चला नहीं गया, परमेश्वर ने उसे दोबारा दर्शन नहीं दिया, जब तक कि वह अपने नजदीकी रिश्तेदारों से दूर नहीं हो गया, सिवाय लूत के। तब हम देखते हैं कि वे इस प्रकार कनान देश में आ गए। और उत्पत्ति 12 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, अब्राहम उस देश में से होकर शकेम में उस स्थान तक पहुंचा जहां मोरे का बांज ब्रिज था। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। मित्रों, यहां पर हम पाते हैं कि कनानी लोग हाम के संतान या वंशज थे। मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात को जोड़ना चाहता हूं। कई लोग यह सोचते हैं कि अब्राहम ने कस्तियों के देश के ऊर नगर को छोड़ दिया, जो भद्दा या भयानक स्थान था, और वह उपजाऊ और अच्छा अनाज देने वाली भूमि जहां दूध और मधु की धारा बहती है और जहां सब कुछ अच्छा ही है, उस देश में आया। वे लोग सोचते हैं कि अब्राहम के इस देश या भूमि में आने के द्वारा उसका भाग्य सुंदर बन गया, या कहें कि वह भाग्यवान हो गया। क्या आप भी ऐसा ही विश्वास नहीं करते? मित्रों, हमें बाइबल ऐसा नहीं बताती है, क्योंकि हम भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा से यह जानते हैं कि कसदियों का ऊर नगर उस समय उच्च कोटि की सभ्यता रखता था। और सच बात तो यह भी है कि अब्राहम और सारै के पास उस समय स्नानागृह भी रहे होंगे। ऊर एक महान और फलता फूलता शहर था और अब्राहम ये सब कुछ छोड़कर कनान देश में आया, और उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे और ये लोग सभ्य नहीं थे। ये असभ्य और देवी देवताओं के उपासक थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम का कनान देश में आना अपने किस्मत को चमकाना नहीं था। वह इस देश में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आया था। अब जबकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, तो आइए देखें कि आगे क्या होता है। उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ेंगे, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब्राम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और यह दूसरा दर्शन था जब अब्राम हारान में था, जो देरी करने का स्थान था। परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन नहीं दिया। मित्रों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि कई बार मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आशीष को प्राप्त नहीं करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बाइबल हमें दोषी ठहराती है, क्योंकि हम उस प्रकाश के स्तर का जीवन नहीं जीते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें पहले से ही बता दिया है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चय ही हम अधिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। जब तक कि वह हारान से नहीं निकल गया और फिर से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जैसे उसे करना चाहिए था नहीं किया। अब परमेश्वर उसे पुनः दर्शन देते हैं और अब्राम के लिए एक वेदी बनाता है, और आगे हम देखेंगे कि वह वास्तव में एक वेदी बनाने वाला व्यक्ति है। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तब वह वहां से आगे बढ़कर बेतेल के पूर्व के पर्वत पर पहुंचा और वहीं अपना तंबू खड़ा किया, जहां पश्चिम में बेतेल और पूर्व में ए है। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि जब अब्राम ने कनान देश में प्रवेश किया तो उसने दो कार्य किए। पहला, उसने तंबू खड़े किए। यह किसी नए स्थान में घर खरीद करके उसमें रहने जैसे है। उसने तंबू खड़ा किया और उसमें रहा। तब उसने एक वेदी बनाई जो परमेश्वर के प्रति उसकी गवाही थी, और जहां कहीं भी अब्राम गया उसने परमेश्वर के लिए एक गवाही छोड़ी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास किस प्रकार की गवाही है। गवाह होने के लिए या गवाही देने के लिए आपको अपने घर के सामने पर्चे लगाने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको कार में या दरवाजे में यीशु बचाता है का स्टिकर लगाने की जरूरत है ताकि आप आजादी से और तेज गति से कार चला सकें, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। मित्रों, यह किसी प्रकार की गवाही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राम निश्चित रूप से परमेश्वर की आराधना करता था, और बहुत जल्द कनानियों ने यह जान लिया कि यह व्यक्ति परमेश्वर का आराधक या उपासक है। आगे हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, और अब्राम वहां से यात्रा करते हुए नेगेव की ओर बढ़ता गया। गर्मी के लिए दक्षिण क्षेत्र बिल्कुल सही स्थान था, और अब्राम दक्षिण की ओर ही जा रहा था। उसके पैर अस्थिर, अर्थात वह चलते रहने वाला व्यक्ति था, या कहें हमेशा घूमते रहने वाला। अब हम उसके जीवन में दूसरी बार कलंक लगने की बात को देखते हैं, अब्राम का विश्वास से चूकना। आइए हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए अब्राम मिस्र को चला गया कि कुछ समय परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भीषण अकाल पड़ा था। मित्रों, अब्राम जिस देश में था वह अशिक्षित भूमि थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे कभी भी छोड़ने के लिए नहीं कहा, परंतु उस देश में अकाल पड़ा। और मैं सोचता हूं कि यह एक सुबह अब्राम ने अपने तंबू के पर्दे को हटाकर बाहर देखा और अपनी पत्नी सारै से कहा, ऐसा लगता है कि सब लोग मिस्र देश की ओर जा रहे हैं। तुमको तो मालूम है कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है और यह अधिक भीषण होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमें भी मिस्र देश में जाने के बारे में सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सारै ने कहा होगा, अब्राम, जो कुछ तुम करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ दिन बीतने के बाद अब्राम ने कुछ यात्रियों से बात की होगी। हो सकता है कि ये लोग उत्तरी क्षेत्र से थे जहां पर पहले वह रहता था, और अकाल के बारे में संदेश दे रहे थे कि अकाल भीषण होता जा रहा है। उन्होंने उसे बताया कि यह भीषण अकाल है, इसलिए वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि एक शाम अब्राम ने सारै से कहा होगा, मैं सोचता हूं कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना सामान बांधकर मिस्र देश को चलें। और तब सारै और अब्राम मिस्र देश के लिए रवाना हो गए। मित्रों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। जब पिछली बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने कहा, अब्राम, यही वह भूमि है जिसे मैं तुझे देने पर हूं, तुम आशीष के स्रोत होगे और मैं तुम्हें यहां पर आशीष देने वाला हूं। परंतु आप देखिए कि अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वह मिस्र देश को चला गया। बाइबल में मिस्र सांसारिकता को दर्शाता है, या सांसारिकता का चित्र प्रस्तुत करता है और आप इसे हर समय पाएंगे। मैं समझता हूं कि आज भी सांसारिकता का चित्र है, परंतु जब हम देखते हैं कि अब्राहम मिस्र देश को चला गया तो यह एक अद्भुत बात है कि संसार आज मसीहियों को कैसे अपनी ओर खींच रहा है। बहुत से लोग इस पर तर्क वितर्क करते हैं और कहते हैं, पादरी साहब, आप जानते हैं कि हम लोग रविवार की सुबह आराधना में नहीं आ पाते क्योंकि रविवार सुबह बच्चों का ट्यूशन रहता है और उस दिन घर में बहुत काम हो जाता है। सोमवार को सब बच्चों को स्कूल भेजना और स्वयं काम पर जाना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये सब कुछ सब लोगों को करना पड़ता है, परंतु फिर भी कुछ लोग रविवारीय आराधना में आते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग रविवारीय आराधना में ना आने की लंबी लिस्ट देते हैं वे ही लोग शादी और पार्टियों में मौजूद रहते हैं और घंटों कार्यक्रम में रहकर बातचीत करने और मस्ती करने में बिताते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना है और काम पर जाना है। मित्रों, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि मसीही लोग किस प्रकार से संसार की ओर खींचते चले जा रहे हैं और कैसे वे अपने बचाव के लिए अनेकों बुद्धिसंगत तर्क पेश करते हैं। मैं सोचता हूं कि यदि आपकी मुलाकात अब्राहम से होती जो मिस्र को जा रहा था और उससे कहते, अब्राहम एक मिनट रुको, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हें तो इसी भूमि अर्थात कनान में रहना चाहिए था, और इसके बदले में अब्राहम आपको एक अच्छा कारण बताता। वह आपसे कहता, मेरी भेड़ों को देखो कि वे कैसी दुबली होती जा रही है, उन्हें यहाँ पर अच्छी घास नहीं मिल रही है, जबकि मिस्र में दुनिया भर की हरी चारागाह है, इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। और वे वहीं गए। मित्रों, जो भी हो, वहां तुरंत उनके लिए एक समस्या आ खड़ी हुई और वह साराय से संबंधित थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। तो आइए पढ़ें उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 11 से 12 पद तक। फिर ऐसा हुआ कि जब वह मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी साराय से कहा, देख, मैं जानता हूं कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे वे जीवित रखेंगे। मित्रों, जैसा कि आप में से संभवतः कई लोग इस बात को जानते हैं कि मृत सागर के उत्तरी क्षेत्र में कुछ पुराने लेख प्राप्त हुए हैं जो गुफाओं में से मिले हैं और वे मृत सागर स्क्रोल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले कुछ अविश्वासी विद्वानों ने यह प्राप्त किया और सोचा कि हम इसके द्वारा बाइबल को गलत ठहरा सकेंगे, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि बड़े बड़े विरोधी कैसे शांत बैठ गए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जो बाइबल का विरोध करे। मित्रों, उन लेखों के स्क्रोल में एक ऐसा लेख है जो खोला नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर है, वे बहुत समय से मुड़े या रोल किए हुए हैं, इसलिए खोलने पर वे टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से एक का नाम है लामेक, जिसे देखा जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसके कुछ पुस्तकों को लामेक का भाग कहा और कहा गया कि बाइबल के अपोक्रिफा के पुस्तकों में से वो एक है। मित्रों, यह कितनी अज्ञानता की बात थी। इसराइल देश ने इसे खरीदा और संग्रहालय में विशेषज्ञों ने इसे नरम करने की कोशिश की जब तक यह खुल न गई। विद्वानों ने पाया कि इसमें उत्पत्ति की पुस्तक के 12, 13, 14 और 15 अध्याय हैं जो बाइबल की लेख में नहीं है, परंतु वे एक व्याख्या में हैं। उसी का एक हिस्सा अध्याय 12 के विषय में कहता है, यह साराय की सुंदरता के बारे में बताता है। वास्तव में यह उसके रूप और सुंदरता को बताता है कि वह कैसी थी। यह इस बात को साबित कर देता है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में उसके बारे में पढ़ते हैं सब ठीक ही है। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ, उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, जिसे हम उत्पत्ति 13 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं। ऐसे कहने के बाद अब्राहम की छानबीन का चित्रण हमें इसी संरक्षित लेख या स्क्रोल में मिलता है। यह लेख या स्क्रोल हमें पहले व्यक्ति अर्थात अब्राहम के द्वारा उसकी यात्रा का वर्णन देता है। यह इस बात को पक्का करता है कि जो बातें बाइबल में इस भूमि की सुंदरता और उपजाव के विषय कही गई थी वह सही है। जिन लोगों ने इस भूमि को आंखों से देखा उन्होंने बाइबल के लेख की गवाही दी है। यह अब्राहम था या और कोई हम नहीं जानते। आज बहुत से लोग उस देश को देखने के लिए जाते हैं और वे यह नहीं समझ पाते हैं कि इस भूमि को कैसे मधु और दूध की धारा वाली भूमि कहा गया। उनका विचार सही है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक हमें बताती है कि किस कारण से वह भूमि उजाड़ हो गई जिसे आज हम देखते हैं, परंतु अब्राम के दिनों में यह महिमापूर्ण भूमि थी। फिर भी कुछ समय के लिए वहां पर अकाल पड़ा और ऐसे कठिन समय में अब्राम कनान देश छोड़कर मिस्र देश को चला गया। और जैसे जैसे वह मिस्र के निकट आया, उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह एक समस्या में पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी पत्नी अति सुंदर थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय के 13 पद में लिखा है, कृपया यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और मैं तेरे कारण जीवित रह सकूं। कृपया यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं, यह आधा झूठ था और इसे हम आगे देखेंगे। मित्रों, आधा झूठ कभी कभी पूरा झूठ बोलने से भी बेकार होता है और यह निश्चय ही धोखा देने के उद्देश्य था। अब्राम का डर सच साबित हुआ क्योंकि राजा फिरौन उसकी पत्नी सारै को ले गया कि उसे रानी बनाए। लेकिन हम स्तेर के पुस्तक से इस बात को जानते हैं कि उन दिनों में रानी बनाने से पहले शुद्धिकरण का समय होता था और उन्हीं समयों में परमेश्वर ने राजा फिरौन और उसके घराने पर बड़ी विपत्ति भेजी कि राजा इस बात को जान ले कि वह सारै को अपनी पत्नी होने के लिए ना ले। आगे हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 18 से 20 पद में पढ़ते हैं, तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? यह तो तेरी पत्नी है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने यह क्यों नहीं कहा वह मेरी बहन है? तूने यह क्यों कहा कि वह मेरी बहन है जिस कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया? परंतु अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे लेकर चला जा। तब फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसको उसकी पत्नी और सारी संपत्ति सहित विदा कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम और सारै के जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वे स्वयं उन पर प्रकट नहीं हुए जब तक कि वे मिस्र देश में थे। मित्रों, हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले अध्ययन में इसके अगले विषय के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।